हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 25, 26, 27 and 28। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठा यमुः सुयोगिनां नीरस्तसाम्या दिशयेन राधसा स्वधामनि मणिरस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा शवसे नमो नमः। किरातहूणा नृपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादया येनि च पापा यदपाश्वयाश्वया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती स्वितन्वता च यसितिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणा ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणनिशो दशषोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वसांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वीतसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या मुखं गुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भ शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंध अध्याय 7 जिसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के अत्यंत ही सुंदर श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में संसार में प्रकट हुए उनके विषय में बताते हैं। और आज जिस तरह से भगवान ने रावण का वध करके उसके सारे घमंड को चूर किया उसके विषय में बता रहे हैं और कहते हैं वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह अंत विडम्बित कुकुम जोश ऊढ़हासम सद्यो सुभि सह विनेश्यति दारहर्तुर विस्फूर्जित धनुष उच्चरतोधिक सैन। वक्षस्थले स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह अंत विडम्बित कुकुम कुकुब्जुषु ऊढ़ ऊढ़हास सद्यो सुभि सह विनेश्यति दारहर्तुर विस्फूर्जित धनुष उच्चरतो दिसैन्ये। वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह अंत विडम्बित कुकुब्जुषु कुकुब्जुष ऊढ़हास सद्यो सुभि सह विनेश्यति दारहर्तुर विस्फूर्जित धनुष उच्चरतो दिसैन्ये। शब्दार्थ वक्षस्थल स्पर्श वक्ष मन उत्थापति स्पर्श यानी छूने से रुग्ण महेंद्र वाह रुग्ण मन खंडित हो गया महेंद्र मतलब स्वर्ग के राजा इंद्र वाह मतलब वाहन की स्वर्ग के राजा इंद्र जो है उनका वाहन कौन है ऐरावत हाथी। और ऐरावत हाथी ने जब रावण के वक्षस्थल को वक्षस्थल स्पर्श उसको स्पर्श किया दंत यानी सूंड से विडम्बित यानी प्रकाशित हुआ कुकुब्जुषु अर्थात सभी दिशाएं ऊढ़हास यानी हट्टास सद्यो सुभि सह विनिश्यति दारहर्तु सद्यो का मतलब होता है तुरंत ही असुभि यानी प्राण सह सहित विनिश्यति यानी मार डाला गया दारहर्तु यानी स्त्री को चुराने वाला विस्फूर्जित धनुष उच्चरतो दिसैन्ये। विस्फूर्जित यानी टेकार उत्पन्न करने वाला ऐसे जो लरजाने वाला धनुष यानी धनुष के द्वारा उच्चरत तेजी से विचरण करते हुए अधिसैन्य यानी दोनों सेनाओं के पक्षों यानी दोनों पक्षों के बीच में। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकरा कर स्वर्ग के राजा ऐरावत की हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौन करने वाले थे। स्वर्ग का राजा ऐरावत जो कि समुद्र से निकला हुआ है बहुत ही विशाल है उसकी एक नहीं 5 सूंड है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन रावण इतना शक्तिशाली था कि जैसे ही ऐरावत पर बैठकर इंद्र ने उसके ऊपर आक्रमण किया, हाथी ने जब सूंड से उसकी छाती पर प्रहार किया तो उसकी छाती को कुछ नहीं हुआ, बल्कि ऐरावत की जो सूंड थी वो टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखरने लगी। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वो अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। फिर रावण को ऐसा लगा कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसने इंद्र को भी हरा दिया। तो फिर वो क्योंकि सोच रहा था सारी दिशाओं को मैंने जीत लिया है, इसलिए वो बहुत गर्व करने लगा। किंतु भगवान श्री राम द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राण वायु के साथ ही सहसा भंग हो गई। लेकिन अधर्म कितना भी जोर पकड़ ले, भगवान अवश्य अधर्म का नाश करते हैं। भले अधर्म के अंदर कितनी ही शक्ति हो, कितना ही पावर हो, कितनी ही तपस्या और साधना हो, लेकिन अगर वो अधर्म है तो वो कभी नहीं टिक सकता। इसलिए भगवान ने अपने धनुष की ऐसी टंकार की कि उसका वो गर्व है वो चकनाचूर हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई जीव कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि भगवान उसके रक्षक हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। आज हम सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम सब हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारे जीवन में पग पग पर बहुत बड़े संकट हैं, और डेफिनेटली है, क्योंकि ये संसार तो है ही दुखाला। तो पदम पदम यत विपता, हर एक कदम पर दुख है, संकट है, विपताएं हैं। लेकिन उन विपताओं से बचने का सुरक्षित और सरल उपाय क्या है कि हम भगवान को प्रसन्न करें। क्योंकि यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब उससे भगवान प्रसन्न होता है तो फिर कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अगर भगवान, वो चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन भगवान उससे रूठ गया हो तो उसको कोई नहीं बचा सकता। बल्कि यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते, निर्बल से निर्बल व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका साथ देता हूँ। सबके हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्वयं विराजमान होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। तो अगर निर्बल से निर्बल व्यक्ति है लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है, बस ये हृदय में इस बात से इस बात को बिठाना है कि हम भगवान से प्यार करते हैं, भगवान हमारा है, भगवान अवश्य हम पर कृपा करेगा, भगवान सदैव हमारा साथ देगा। ये श्रद्धा और विश्वास भगवान को हमारा बढ़ा देते हैं। भगवान बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्। तुम जिस भाव से मेरे पास आओगे, मैं भी उसी भाव से तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करूंगा। तो हमें हर वक्त ये याद रखना है कि कृष्ण हमारा है, वो सदैव हमारी रक्षा करेगा। फिर चाहे सारे संसार जो है वो हमारे विपक्ष में हो जाए, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ब्रह्मा जी हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण के अवतार के विषय में बता रहे हैं, अत्यंत ही सुंदर वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भूमे सुरे तरवरूथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलया सित कृष्ण केश जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि सत्ममहि हिमोपनिबन्धनानि भूमय सुरेतरवरूथ विमर्दिताया। क्लेश व्ययाय कलय सित कृष्ण केश जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्ममहिमो पनिबन्धनाय। शब्दार्थ भूमि सूर्य तवरी रूथि विमर्दिताय। भूमि मतलब संसार, जो भूमि है संसार है। सुर इतर यानी देवताओं के अतिरिक्त अन्य। वरुथ यानी सैनिक। विमर्दिताय बाहर से पीड़ित हो गए थे और उसके कारण क्लेश व्यवाय कलया सित कृष्ण केश। क्लेश अर्थात कष्ट, व्यय कम करने के लिए, कलया अपने अंश समेत जो भगवान के अंश और कलाएं हैं। सित कृष्ण केश, सित कृष्ण अर्थात ना केवल सुंदर किंतु कृष्ण भी, केवल सुंदर ही नहीं बल्कि आकर्षित करने वाले केश। ऐसे केशों से युक्त जात करिष्यति, जात मना प्रकट होकर, करिष्यति मतलब करेगा, जन अनुपलक्ष जन यानी समान जन और अनुपलक्ष मतलब कम दिखने वाला मार्ग यानी पथ। कर्माणि चात्म मम हिमोप निर्धनान्ति, कर्माणि मतलब कार्य च भी, आत्म महिमा यानी स्वयं भगवान की महिमा, उपनिबंधनानि यानी प्रसंग में। अनुवाद, जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने अनादि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में बता रहे हैं कि जब संसार में अधर्म इतना जोर बढ़ जाता है कि कोई भगवान की ओर जो लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं और एक दूसरे राजा जो हैं वो एक दूसरे को कष्ट देना शुरू कर देते हैं, सब लोगों को जो भगवान के भक्त होते हैं उनको दुखी करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से सब लोग दुखी हो जाते हैं और भगवान अपने भक्तों का दुख नहीं देख पाते। फिर भगवान किस रूप में अवतार लेते हैं? अत्यंत ही सुंदर कह रहे हैं, केशव्याय कलया सित कृष्ण केश, कि वो भगवान इतने सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं। यानी भगवान के तो दूसरे भी बहुत सारे रूप है ना, जैसे भगवान का परमात्मा स्वरूप है, भगवान का विश्व रूप है, भगवान का विराट स्वरूप है, भगवान के अन्य बहुत सारे अवतार भी हैं। लेकिन यहाँ पर जिस अवतार की बात की जा रही है उसके लिए कहा गया है कि उपलक्ष्य मार्ग, ये वो भगवान है जो कि साक्षात केशव व्यय कलया सित कृष्ण केश, वो इतने सुंदर कृष्ण के स्वरूप में जो उनका निज स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है, सॉरी श्रीमद् भगवत गीता 11.51 में अर्जुन बताते हैं, दृष्ट्वैदं मानुषं रूपं तव साम्य जनार्दन, दृष्ट्वैदं मानुषं रूपं तव साम्य जनार्दन। ये जो आपका मनुष्य स्वरूप है, जो सौम्य है, जो आपका निज स्वरूप है, उसको देखकर मैं अपनी प्रकृति को प्राप्त किया है, मैं अपनी प्रकृति को हासिल किया है। इदानीम अस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिम गता, तो जीव जो है वो अपनी वास्तविक प्रकृति में तब आता है जब भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आता है। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप द्विभुज है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है, गॉड मेक द मैन ऑन हिज ओन इमेज, भगवान ने जीव मनुष्य को अपने ही स्वरूप जैसा बनाए। इसका मतलब भगवान भले ही कोई भी स्वरूप धारण करे, लेकिन भगवान का जो निज जो वास्तविक स्वरूप है वो कौन सा है? दो ही भुज। और उसके लिए 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 52 में भगवान अर्जुन बताते हैं, श्री भगवान स्वयं अपने मुख से बताते हैं, सुदुर्दशामिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्ययस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण सुदुर्दशामिदं रूपं। ये जो स्वरूप आप मेरे सामने देख रहे हो ना, सुदूरदर्शन, ये बहुत कठिन है। और दृष्टवान से यन मथा, जो जैसा मैं आपके सामने एज इट इज खड़ा हूँ ना, ऐसा मेरे को देख पाना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता ही है कि भगवान के निज स्वरूप में या द्विभुज स्वरूप में खड़े भगवान हो तो उसको देखना क्या मुश्किल है, और भी विश्व रूप को देखना मुश्किल होगा ना, क्योंकि विश्व रूप के अंदर से बहुत सारी अग्नि निकलती है, प्रकाश निकलता है, इतना भयानक स्वरूप होता है, विकराल होता है, तो उसको देखना मुश्किल हो सकता है कि है ना भगवान के परमात्मा या नारायण स्वरूप को देखना मुश्किल हो सकता है नरसिंह स्वरूप, क्योंकि वो आधा नर और आधा सिंह होता है, उसको देखना कठिन हो। लेकिन सुदूरदर्शन मिदम रूपम दृष्टवानसी यन्मया, अर्जुन को भगवान कहते ये जो स्वरूप तुम्हारे सामने खड़ा है ना, उसको देखना कठिन है। तो प्रश्न होता है उसको देखना क्यों कठिन है? उसको देखना कठिन नहीं है, यहाँ पर भगवान का अभिप्राय ये है कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ ना, तो मुझे समझना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मैं भले उनके सामने आ जाता हूँ तो भी वो मुझे सही रूप में देख नहीं पाते हैं। वो क्या सोचते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। जब मैं मनुष्य स्वरूप में धारण स्वरूप को धारण करता हूँ तो मूर्ख मेरा, और भगवान के कार्य इतने अद्भुत होते हैं कि उनको देखकर समझ में नहीं आता कि ये भगवान हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं परम भावम अजानन्तो मम भूतमहेश्वरा, वो मेरे परम भाव को समझ नहीं पाते हैं कि मैं साक्षात भगवान हूँ। इसलिए वो भले देख लेते हैं मेरे इस परम स्वरूप को, मेरे मनुष्य स्वरूप को, लेकिन फिर भी वो उससे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम। और उसके आगे भगवान कहते हैं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन का, देवा अप्यस्य रूपस्य, ये जो भगवान का घुंघराले बालों वाला, कमल जैसे पंखड़ियों जैसे नेत्रों वाला और सुंदर सुंदर अजरों वाला बांसुरी बजाता हुआ जो स्वरूप है ना, उसको देखकर क्या होता है? देवा अप्यस्य रूपस्य, जब देवता भी बड़े बड़े इस स्वरूप को देखते हैं नहीं, नित्यम दर्शन कांक्षणा, वो भी उसको पहले तो हमेशा उनकी इच्छा होती है कि हम इस स्वरूप को देखें, है ना। जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो उससे पहले सारे देवी देवता जाते हैं भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया आइए और पृथ्वी महारानी का कष्ट दूर करने के लिए संसार में अवतार लीजिए। और सब देवता जो है नित्यम दर्शन कांक्षणा, हमेशा इच्छा करते हैं कि कब भगवान आएंगे, हमें उनके दर्शन होंगे। और जो बहुत शुद्ध स्वभाव के देवता होते हैं जैसे महादेव, वो तो आ जाते हैं योगी का रूप धारण करके। यशोदा मैया को कहते हैं, मैया मुझे अपने अपने लाला के दर्शन करा दो, मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई दान नहीं चाहिए, बस मुझे आपके आपके लाला के दर्शन करने हैं। तो महादेव जैसे महावैष्णव तो भगवान को जान जाते हैं, लेकिन दूसरे सारे देवी देवता जो है ना, वो इनको देखकर, हालांकि सारे देवी देवता खुद जाते हैं ना भगवान को मनाने के, लेकिन फिर भी वो आकर मोहित हो जाते हैं। कभी इंद्र गोकुल को डुबोने के लिए वर्षा बरसाता है, तो कभी ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बच्चों को लेके जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि ये जो स्वरूप है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वो अपने पूर्ण अंश के समेत वे सुंदर काले काले अंशों केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा का विस्तार करने के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कार्य करने का भगवान का संसार में आने का एक ही कारण कि भगवान की दिव्य महिमा का विस्तार हो और कोई उनकी महिमा का अनुमान नहीं लगा सकता। भगवान को स्वयं ही आके बताना पड़ता है कि मैं कितना महान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं विराट स्वरूप हूँ, फिर भी अपने भक्तों के लिए मैं सारथी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं भक्तों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, नरसिंह का स्वरूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। तो ये भगवान जो है वो अपनी महिमा, कोई भी भगवान की महानता का अनुमान नहीं लगा सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ना हम वैदाय न तपस्या न ज्ञाने न चेष्टया। चाहे सारे वेदों का रटन कर लिया जाए, कितनी भी तपस्या कर दी जाए, कितना भी दान दे दिया जाए, लेकिन इन सब कांडों से हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने का केवल एक ही तरीका है कि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम उच्चारण करें। जैसे जैसे श्रवण और कीर्तन के द्वारा हृदय के अंदर अज्ञान समाप्त होता जाएगा, तभी हम भगवान की वास्तविकता को समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम अवतार भगवान बलदेव के प्राकट्य का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनके रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं और यह संपूर्ण इकाई परब्रह्म कहलाती है। भगवान के ऐसे विस्तारों को के दो विभाग हैं, स्वांश तथा विभांश। सारे स्वांश अवतार विष्णु तत्व कहलाते हैं और विभांश अवतार विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश अवतार है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो टाइप के अवतार होते हैं, एक स्वांश और दूसरे विभनाद। जो स्वांश अवतार है वो विष्णु तत्व कहलाते हैं। स्वांश मतलब भगवान का ही अंश है उसमें, विभिन्न अंश वो भी तो भगवान के ही अंश है, लेकिन वो भगवान से भिन्न है, उनके और स्वांश की क्वालिटीज में फर्क है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं सारे स्वांश विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। जो स्वांश है वो विष्णु तत्व कहलाते हैं, जैसे और विभिन्न अंश जो है वो जीव तत्व कहलाते हैं। हम भी भगवान के ही अंश है लेकिन भिन्न है। और ऐसे विस्तार में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश अवतार है। प्रथम मतलब सबसे पहले कृष्ण से बलदेव और बलदेव से बात उसके बाद दूसरे अवतार। तो ये बलदेव जो है वो भगवान के स्वांश यानी विष्णु तत्व अवतार है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की उम्र बड़ी हो जाने पर भी उनके काले काले बाल बताए गए हैं। भगवान को अनुपलक्ष्य मार्ग अथवा वैदिक परिभाषिक शब्दावली में अवांग मनस्सा गोचर कहा गया है, अर्थात जो सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रिय अनुभूति के से अनुभव गम्य या दृश्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7.25 में कहा गया है, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभि जानाति। तो भगवद गीता में बताया, मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ और अपनी योग माया के द्वारा आच्छादित होता हूँ। दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे जिसके समक्ष चाहे प्रकट हो या न हो, केवल प्रामाणिक भक्ति ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं। और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है, सिद्ध कृष्ण केश, अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलदेव दोनों के सिरों पर बड़ी उम्र में भी ऐसे बाल रहते थे। वे बड़ी उम्र में भी 16 वर्ष के बालकों से प्रतीत होते थे। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं से सबसे वृद्ध हैं, किंतु वे सदैव नव युवक लगते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम, भले ही वो सबसे पुराने हैं, सबसे आदि हैं, लेकिन सदैव नव युवक की तरह लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है। भौतिक देह में जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीव आत्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें वृद्धावस्था का कोई लक्षण नहीं दिखता। भागवत के छठे स्कंद में कहा गया है कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णु दूत आए वे तरुण लग रहे थे। इससे भी इस श्लोक के वर्णन की पुष्टि होती है। अतः यह निश्चित हो गया है कि वैकुंठ लोकों में भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्यों के भौतिक शरीरों से पूर्णतया भिन्न है। अतः जब भगवान उस लोक से इस संसार में अवतरित होते हैं, तो वे अपनी आत्ममाया अर्थात अंतरंग शक्ति के आध्यात्मिक शरीर समेत आते हैं, जिसमें बहिरंगा माया अर्थात बाह्य भौतिक शक्ति छू नहीं पाती। जो ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं, तब वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं, भौतिक देह में नहीं। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति यानी भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है, अतः भगवान के शरीर तथा उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के गुण में कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवान का शरीर, जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, तो देह जो वो भगवान की जो देह होती है और जो साधारण मनुष्यों की देह होती है, उसमें डिफरेंट होता है। ऐसे नहीं कि भगवान का शरीर भी हमारी तरह साधारण होता है, जैसे कि वो बूढ़ा हो जाए, उसको बीमार हो जाए, रोगी हो जाए, नहीं। भगवान का जो दिव्य शरीर है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हम जाते हैं भगवान के साथ, तो ऐसा नहीं खाली हमें आत्मा जाती है, उसको भी एक देह प्राप्त होता है। लेकिन वो देह कैसा होता है? वो सच्चित आनंद देह होता है। वो कभी भी क्षीण नहीं होता है, वो उसमें कभी बुढ़ापा के लक्षण नहीं होते हैं। वो निश्चित रूप से भगवान और भगवान के लोक के जो निवासी हैं, उनका शरीर इस भौतिक जगत के शरीरों से विभिन्न होता है। इसे जब भगवान संसार में आते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान भी भौतिक शरीर इख्तियार करके भौतिक जगत में आते हैं, ऐसा बिल्कुल श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो तो सारी गलत बात बोल रहे होते हैं। ऐसा अनर्गल बातें, अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रश्न ये है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न हुए भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं? निसंदेह भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलाप प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलाप प्रदर्शित करने हेतु यहाँ पर आते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख भोगना चाहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 9.13 और 14 में कहा गया है कि महात्मा गण भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च कथयन्ति च माम नित्यम। भगवान कहते हैं भक्त जो है उनको एक ही चीज में आनंद आता है कि वो मेरी महिमा का गुणगान करें, मेरे पवित्र नाम का जप करें, मेरी कथाओं को श्रवण करें, और उसमें उनको बेजारी नहीं होती है। उनको क्या होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ से ये तो समझ में आता है कि भक्त वही है जिसको भगवान की कथाओं को श्रवण करने में, भगवान के नाम को जप करने में ही आनंद आए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की महिमा का गुणगान करके जीवन का आध्यात्मिक सुख भोगना चाहते हैं। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने आगे बताया कि समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। इस प्रकार सांसारिक लोगों से संबंधित भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय हैं। यानी अगर भगवान यदि भौतिक जगत में आकर इतनी सुंदर लीलाएं करेंगे नहीं और इस तरह से अपने भक्तों को सहायता नहीं करेंगे तो फिर जो भक्त हैं दूसरे वो किस तरह से भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे। तो भगवान के इस भौतिक जगत में आने का कारण केवल दुष्टों का विनाश करना या फिर पापियों को खत्म करना या धर्म की स्थापना करना नहीं है, बल्कि भगवान इस जगत में इसलिए आते हैं ताकि वो जो सुंदर सुंदर लीलाएं करें उनको स्मरण करके संपूर्ण जीव का कल्याण हो सके। जब तक भगवान यहाँ पर हैं, तो उनके साथ जो लीलाएं करते हैं वो कल्याण उनका कल्याण होता है और भगवान की लीला समाप्त होने के बाद हम जैसी पतित आत्माओं का कल्याण होता है जो हम भगवान के विषय में उनके लीलाओं को उनके गुणों का गुणगान करते हैं और अपने जीवन को आनंदित करते हैं। तुकेन जीव हरणम यदुलूकिकायास त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्त यद्रिङ्गतन्तरगतेन दिविस्प्रशोर्वा उन्मूलन त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्याम् तोकेन जीव हरण यदुलूकिकायास् त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्त यद्रिङ्गतन्तरगेन दिविस्पृशोत्वा उन्मूलन त्वितरथा चुनयोर्न भाव्यम् तोकेन जीव हरणम् यदु लूकिका तोकेन के तो छोटा बच्चा जो बालक होता है जीव हरणम यानी जीव का वध यद जो उलूकिकाय यानी असुर का विशाल शरीर धारण कर लिया और त्रैमासिकस्य यानी तीन महीने का च भी पदा पैर से शकट अपवृत्त यानी चकड़े को पलट दिया और उसके बाद यत जो रिंगिता यानी घुटने के बल पर चलता है अंतरगतेन बीच में जाकर दिवि यानी आकाश में ऊंचे स्पर्शो छूते हुए वा अथवा उन्मूलनम जड़ समेत उखाड़ लेना तू लेकिन इतरथा के अतिरिक्त अन्य अर्जुनायो यानी दो अर्जुन वृक्ष न भाव्यम संभव न था। हर किसी के लिए ये कार्य संभव नहीं होते हैं जो कि भगवान ने इतनी छोटी सी आयु में किए। अनुवाद देखिए, भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे छोटे से थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई नहीं कर सकता, जैसा कि आजकल के कम बुद्धि वाले लोग करने लगे हैं। ईश्वर तो सदैव ईश्वर ही रहा है और सामान्य जीव आत्मा नित्य ईश्वर का एक अंश है। ईश्वर अद्वितीय है किंतु सामान्य जीव आत्मा अनगिनत है। इन सभी जीव आत्माओं का पालन स्वयं ईश्वर द्वारा होता है, वेदों का यही मत है। जब कृष्ण अभी माँ की गोद में ही थे तो पूतना राक्षसी उनकी माता के समक्ष आई और उसने शिशु को अपनी गोद में खिलाने के लिए याचना की। माता यशोदा राजी हो गई और वह शिशु को सम्मानीय स्त्री वेश में आई पूतना की गोद में दे दिया। पूतना अपने स्तनों के अग्रभाग में विष लगाकर आई थी और इस शिशु को मारना चाह रही थी। और जब सब कुछ पूरा हो गया तब बालक रूप भगवान ने उसके स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए और उसका 6 मील लंबा शरीर भूमि पर जा गिरा। लेकिन भगवान को अपने शरीर का पूतना राक्षसी के शरीर जितना विस्तार नहीं करना पड़ा। यद्यपि वे चाहते तो 6 मील से भी अधिक विशाल बन सकते थे। अपने वामन अवतार में उन्होंने स्वयं को बौना ब्राह्मण बना दिया था, किंतु जब बलि महाराज ने भूमि देने का वचन दे दिया तो उन्होंने अपने अंगों को ब्रह्मांड की चोटी तक करोड़ों मील तक लंबा कर दिया। अतः अपने शरीर को विस्तृत करके चमत्कार दिखाना श्री कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, किंतु उन्होंने प्रगाढ़ मात्र प्रेम के कारण ऐसा नहीं किया। यशोदा यदि अपने पुत्र को पूतना की गोद में 6 मील तक विस्तृत होते देख लेती तो उनके मातृत्व को धक्का लगता और वे जान जाती कि उनका यह तथाकथित पुत्र श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। और कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान होने पर यशोदा माई को अपने पुत्र के प्रति सहज मात्र प्रेम ना रह पाता। किंतु जहाँ तक श्री कृष्ण का संबंध है, वे तो सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपनी माता की गोद में शिशु रूप में हो या वामन देव के रूप में सारे ब्रह्मांड को नापने वाला हो। उन्हें कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि कुछ लोग ऐसा करके ईश्वर बनने की बात सोचते हैं, कठिन आत्म संयम तथा तपस्या द्वारा कोई ना तो ईश्वर से एकाकार हो सकता है ना उनके तुल्य हो सकता है, किंतु वह मात्र अनेक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा बहुत हद तक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है, किंतु वह ईश्वर नहीं बन सकता। श्री कृष्ण बिना किसी तपस्या के सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं या बड़े होने की अवस्था में हों। इस प्रकार जब वे केवल 3 मास के थे तब उन्होंने यशोदा माई के घर में छकड़े के पीछे छिपे शक्ताशुर का वध किया। जब श्री कृष्ण घुटने के बल रेंग कर अपनी माता के कार्य में बाधा डाल रहे थे तो उनकी माता ने उन्हें उखल से बांध दिया था, किंतु नटखट बालक उखल को घसीटते हुए यशोदा माई के आंगन में उगे हुए बहुत ऊंचे अर्जुन वृक्ष की जोड़ी के बीच में पहुंच गए। और जब उखल 2 वृक्षों के बीच फंस गया तो उनके खींचने पर दोनों वृक्ष धाम करके नीचे गिर पड़े। जब यशोदा माई ने यह घटना देखी तो उन्होंने ईश्वर के को धन्यवाद किया कि उनका बालक गिरे हुए वृक्षों से बच गया। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं था कि उन्हीं के बालक ने आंगन में रेंगते रेंगते यह कृत्य किया है। भगवान तथा उनके भक्तों के बीच प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान ऐसा ही है। यशोदा माई ने भगवान को पुत्र रूप में चाहा और भगवान उनकी गोद में शिशुवत क्रीड़ा करते रहे, किंतु साथ ही जब जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान की भी भूमिका निभाई। ऐसी लीलाओं की यही विशेषता रही है कि वे सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते रहे हैं। जुड़वा विशाल अर्जुन वृक्षों को गिराने के पीछे भगवान का उद्देश्य था। नारद मुनि के शाप से वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्रों को शाप से उबारना और इसके साथ ही यशोदा माई के आंगन में घुटने के बल सरक सरक कर चलना, जिससे देखकर यशोदा को दिव्य आनंद प्राप्त हो। भगवान चाहे जैसी भी स्थिति में रहते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वे इच्छा अनुसार विराट या लघु रूप धारण कर सकते हैं और भगवान के रूप में कार्य कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के भगवान होने के विषय में बताया कि भगवान होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान तो शुरू से होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ करके जीव भगवान प्राप्त कर सकता है, चाहे वो कितनी तपस्या कर ले, कितना ही अपने अंदर गुण एकत्रित करे, वो गुणवान हो सकता है लेकिन भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो कृष्ण है, कृष्ण थे और कृष्ण ही रहेंगे। चाहे वो दो दिन का बच्चा या एक दिन का उस समय पैदा हुआ बच्चा जो कंस के सारे तालों को तोड़कर नंदगांव में आता है, या फिर षष्ठी पूजा में पूतना को जैसी बड़ी बड़ी राक्षसी को मारता है और घुटनों के बल रेंगते हुए यमुना और अर्जुन वृक्षों को गिराता है, वो चाहे छोटा सा बच्चा दिखे या शक्तिशाली युवक दिखे, वो भगवान ही है और वो केवल कृष्ण ही ऐसा कार्य कर सकता है। तो ये सारी लीलाएं हम विस्तार से 10वें स्कंद में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।